नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी आज राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य के 24वें मुख्यमंत्री होंगे। जदयू के वरिष्ठ नेता बिजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, महिला आरक्षण विधेयक संतुलित और हर राज्य समुदाय तथा क्षेत्र की आकांक्षाओं को पूरा करता है। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO आज से मोतिहारी में रक्षा उपकरणों की भव्य मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी आज राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य के 24वें मुख्यमंत्री होंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन लोकभवन में आयोजित समारोह में श्री चौधरी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। जानकारी के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10:50 से शुरू होगा। श्री चौधरी राज्य में शीर्ष पद ग्रहण करने वाले भाजपा के पहले नेता होंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री के पद पर जदयू के वरिष्ठ नेता और सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से विधायक विजय कुमार चौधरी तथा सुपौल के विधायक बिजेंद्र प्रसाद यादव शपथ ग्रहण करेंगे। मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की सूची बाद में जारी की जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता JP नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। तारापुर के विधायक भाजपा नेता सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले राज्य के दूसरे नेता होंगे। इससे पहले भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री से राज्य के सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे। एक रिपोर्ट।
श्री चौधरी का राजनीतिक करियर वर्ष 1990 में राष्ट्रीय जनता दल से शुरू हुआ। बाद में वर्ष 2014 में वे जदयू में शामिल हुए। वर्ष 2018 में श्री चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी ने उनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें वर्ष 2019 में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। वर्ष 2020 में वे विधान परिषद के सदस्य बने। मार्च 2023 से जुलाई 2024 तक सम्राट चौधरी ने बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। राजनीतिक परिवार में जन्मे सम्राट चौधरी की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में रही है जो अपने आक्रामक तेवर और सीधे संवाद के लिए जाने जाते हैं। समाचार कक्ष से मैं अनुपम कुमार।
सम्राट चौधरी ने नई जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक निभाने की अपनी वचनबद्धता जताई है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि बिहार के लोगों की सेवा करने और उनके विश्वास तथा सपनों को साकार करने का यह एक अवसर है।
आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए। जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे।
इससे पहले कल सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने लोकभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पूर्व भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित पार्टी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता चुने गए। बदलते घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल लोकभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश की। राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए उन्हें नई सरकार के गठन होने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का निर्देश दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि श्री चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलकर बिहार को प्रगति पथ पर और आगे ले जाएंगे।
बिहार के अब तक मुख्यमंत्री रहे श्री नीतीश कुमार जी की जो लंबी लकीर उन्होंने खींचा है, सम्राट चौधरी जी पूरा एनडीए को पूरा सामाजिक एक समीकरण बना के सबको साथ लेके अच्छा काम बिहार में करेंगे। एनडीए जो पिछले दो दशकों से अच्छे काम कर रहा है, उसको आने वाले दिनों में भी एनडीए श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में करेगा, मेरा पूरा भरोसा है। मैं उनको अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूँ।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सम्राट चौधरी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले भी एनडीए की सरकार थी और अब भी एनडीए की सरकार रहेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सम्राट चौधरी को बिहार एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी है। श्रीमती गुप्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार में जारी विकास की यात्रा लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए लिखा है कि उनके नेतृत्व में बिहार तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने के लिए कल से 3 दिन का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक हर राज्य, समुदाय और क्षेत्र की आकांक्षाओं को पूरा करता है।
इस सत्र में ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के जो सरकार आ रहे हैं, ये सिर्फ सरकार का बिल नहीं है, सब पॉलिटिकल पार्टी और एक तरीके से पूरा देश का बिल है। देश के महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में जो जगह मिलने जा रहे हैं, ये किसी एक दल का मुद्दा हो ही नहीं सकता है। प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद भी दिया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने पिछले बार जब पहला इसको पारित किया था, तब सब पार्टी ने मिलकर के नारी शक्ति अधिनियम को बनाया।
इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी। इसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान 2023 में संविधान संशोधन के जरिए किया गया था। इस बीच भाजपा ने पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को संसद के इस विशेष सत्र में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO आज से 18 अप्रैल तक मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। इसमें DRDO की अत्याधुनिक तकनीक और उन्नत प्रणाली का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस दौरान सतह से वायु में भेदने वाली मिसाइल, आकाश, ब्रह्मोस, पृथ्वी, कावेरी इंजन का रैपिड प्रोटोटाइप मॉडल, बैलिस्टिक हेलमेट और कई अन्य रक्षा उत्पादों के मॉडल और उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद देश में घरेलू LPG, PNG और CNG की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और LPG का पर्याप्त भंडार है और किसी भी LPG वितरक केंद्र पर आपूर्ति में कमी की कोई सूचना नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन LPG बुकिंग में 98% की वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों के लिए 23 मार्च से अब तक 14 लाख रुपए से अधिक मूल्य के 5 किलोग्राम के फ्री ट्रेड LPG सिलेंडरों की बिक्री की गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश में LPG के बैकलॉग को दूर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में प्रतिदिन 84,000 सिलेंडर का बैकलॉग बना हुआ है। मुख्य सचिव ने सभी प्रभारी सचिवों और जिलाधिकारियों को अपने अपने जिलों के नियंत्रण कक्ष में प्राप्त होने वाली शिकायतों में कमी लाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 5 किलो FTL गैस सिलेंडर के वितरण की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इधर रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति में अनियमितता और कालाबाजारी पर सख्त नियंत्रण के लिए राज्य भर में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अब तक 1,814 सिलेंडर जब्त किए गए हैं, वहीं 138 प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। अधिकांश स्थानों का तापमान 35 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं गया जी का अधिकतम तापमान 39.2, अरवल का 38 और पटना का अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में कई भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना है। विभाग के अनुसार 17 और 18 अप्रैल को उत्तर पूर्व बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। दरभंगा समेत मिथिला क्षेत्र में आज प्रसिद्ध पर्व जुड़ शीतल पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
प्रकृति प्रेम को समर्पित मिथिला का विशेष पर्व जुड़ शीतल की धूम है। सूर्योदय से पूर्व घर की बड़ी महिलाओं ने परिवार के सदस्यों के माथे पर जल सिंचित कर जुड़ैल रहू का आशीर्वाद दिया। इसके बाद लोग सुबह से ही अपने बगानों में वृक्षों में जल सिंचित कर रहे हैं, एक दूसरे को गीली मिट्टी लगाकर प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। आज के दिन बासी भोजन खाने की परंपरा के कारण इस पर्व को 22 पावन के नाम से भी जाना जाता है। कई स्थानों पर कुश्ती, पतंगबाजी, शिकार आदि का भी आयोजन किया जा रहा है। दरभंगा के शुभंकरपुर, लालबाग आदि मोहल्लों में जुड़ शीतल महोत्सव के तहत कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गौरी शंकर की झांकी भी निकाली जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा।
अररिया जिले के रानीगंज और पलासी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक फोटो स्टेट और एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में फर्जी आधार और पैन कार्ड समेत अन्य सरकारी दस्तावेज बनाने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में नई सरकार से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, सम्राट बिहार के नए सरताज, सम्राट के सीएम बनने की घोषणा पर झूमा लखनपुर। दैनिक जागरण लिखता है, नीतीश ने सम्राट को सौंपा बिहार, सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद राज्यपाल ने सम्राट चौधरी को शपथ ग्रहण का दिया आमंत्रण। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, बिहार के हज यात्रियों का पहला जत्था 18 अप्रैल को कोलकाता, दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट से रवाना होगा। प्रभात खबर ने लिखा है, पश्चिम एशिया संकट पर ट्रंप ने पीएम मोदी से की 40 मिनट बात। राष्ट्रीय सागर और आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने राज्य में हड़ताल पर गए राजस्व और भूमि सुधार विभाग के 41 अंचलाधिकारियों के निलंबन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी आज राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य के 24वें मुख्यमंत्री होंगे। जदयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, महिला आरक्षण विधेयक संतुलित और हर राज्य, समुदाय तथा क्षेत्र की आकांक्षाओं को पूरा करता है। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO आज से मोतिहारी में रक्षा उपकरणों की भव्य मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।